السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، فروری کی 2 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے سٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے پاکستان افغانستان کی عبوری حکومت سے مخلصانہ تعاون کی توقع کرتا ہے، اور کابل دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان اور بین الاقوامی برادری سے کیے گئے اپنے وعدوں کی پاسداری کرے گا۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان ممتاز زہرہ بلوچ نے جمعرات کو معمول کی ہفتہ وار بریفنگ کے دوران یہ بات افغانستان کی طالبان انتظامیہ کے عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی کے اس بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہی، جس میں متقی نے کہا تھا کہ پشاور کے پولیس لائنز میں ہونے والے حملے کا الزام کابل پر عائد نہ کیا جائے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے منگل کو قومی اسمبلی میں پشاور کے خودکش حملے پر ایوان میں ہونے والی بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ افغان طالبان نے دوحہ معاہدے میں یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دی جائے گی۔ خواجہ آصف نے الزام عائد کیا کہ افغان طالبان حکومت سرحد پار سے پاکستان میں مبینہ طور پر ہونے والی کلدم شدت پسند گروپ تحریک طالبان پاکستان کی عسکری کاروائیوں سے صرف نظر کر رہی ہے، لیکن افغان طالبان کے وزیر خارجہ متقی نے پاکستان پر زور دیا کہ وہ پشاور کی مسجد میں پیر کو ہونے والے دھماکے کی تفصیلات سے تحقیقات کرے اور تنقید کے بجائے کابل کے ساتھ تعاون کرے۔ اس کے ساتھ متقی نے دعویٰ کیا کہ افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ممنوع فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دائر درخواست مسترد کر دی ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار پر مشتمل لارجر بینچ نے جمعرات کو ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنایا۔ پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے ممنوع فنڈنگ کیس میں قرار دیا تھا کہ پی ٹی آئی پر غیر ملکی فنڈنگ کا الزام ثابت ہوا ہے۔ کمیشن نے اس معاملے کو مزید کارروائی کے لیے وفاقی حکومت کو بھیجنے کا اعلان کیا تھا۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور تحریک انصاف کے اتحادی سابق وفاقی وزیر شیخ رشید کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں دی جانے والی درخواست میں الزام لگایا گیا ہے کہ شیخ رشید نے اپنے ایک انٹرویو میں آصف زرداری پر عمران خان کو قتل کرانے کی سازش کا الزام لگایا تھا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ الزام کے ذریعے سازش کرنے پر شیخ رشید سمیت دیگر افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے شیخ رشید کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس بنیاد پر تاریخ میں کبھی کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی گرفتاری پر وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ قانون کی خلاف ورزی پر کارروائی کرنا پولیس کا فرض ہے۔ شیخ رشید کی گرفتاری پر انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسے سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وفاقی تفتیشی ادارے ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے اینکر عمران ریاض خان کو لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا ہے۔ عمران ریاض خان کو اداروں کے خلاف متنازعہ بیانات دینے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ عمران ریاض خان کو بدھ اور جمعرات کے درمیانی شب اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ متحدہ عرب امارات جانے کے لیے لاہور ایئرپورٹ پہنچے تھے۔ بھارت کی ریاست کیرالہ سے تعلق رکھنے والے صحافی صدیق کپن جمعرات کی صبح کو لکھنؤ کی ضلع جیل سے رہا ہو گئے۔ وہ 28 ماہ سے جیل میں بند تھے۔ لکھنؤ کی ایک عدالت نے بدھ کو انہیں جیل سے رہا کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ کپن نے جیل سے رہا ہونے کے بعد نشریاتی ادارے NDTV سے بات کرتے ہوئے کہا कि जमानत मिलने के बावजूद उन्हें जेल में रखा गया। वो खतरनाक कानून के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। उन पर UAPA और इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की दफात के तहत मुकदमात कायम किए गए हैं। सहाफियों की तंजीमें और इंसानी हकूक के कारकुन उनकी और दीगर सहाफियों की गिरफ्तारी की मजम्मत कर रहे हैं। उनका इल्ज़ाम है कि हुकूमत प्रेस की आज़ादी को महदूद करने की कोशिश कर रही है, जबकि हुकूमत ऐसे किसी भी इल्ज़ाम की तरदीद करती है। इस वक्त भारत में 6 सहाफी जेलों में बंद हैं। अफगानिस्तान में ख़वातीन और लड़कियों पर जबर में मुलव्वस तालिबान अरकान के लिए अमरीका ने वीज़े पर पाबंदी लगा दी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने बुध के रोज़ ऐलान किया कि अमरीका बाज मौजूदा और साबिख़ तालिबान अरकान, गैर रियासती सिक्योरिटी ग्रुप के अरकान और दीगर अफराद पर नई वीज़ा पाबंदियाँ आयद कर रहा है, जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो अफगानिस्तान में ख़वातीन और लड़कियों के हकूक को दबाने में मुलव्वस हैं। ये ऐलान तालिबान की जानिब से ख़वातीन के यूनिवर्सिटियों में जाने और गैर सरकारी तंजीमों के साथ काम करने पर पाबंदी के ऐलान के 1 माह से ज़ायद अरसे के बाद सामने आया है। ब्लिंकन ने इन फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि वो नई वीज़ा पाबंदियों में शामिल हैं और कहा कि अमरीका इन इकदाम की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करता है। उज़्बेकिस्तान रेलवे ने 1 फरवरी से अफगानिस्तान के लिए अपने ऑपरेशन को मुअत्तल कर दिया है, क्योंकि अफगानिस्तान तकनीकी काम की जिम्मेदारियों को पूरा करने में नाकाम रहा है। कंपनी की प्रेस सर्विस ने बुध को कहा कि अफगानिस्तान रेलवे अथॉरिटी तयशुदा इकदाम पर बरवक्त अमल दरामद से कासिर रही, इसलिए इत्तला दी जाती है कि अफगानिस्तान के लिए रेल की आमदरफ्त 1 फरवरी से मुअत्तल की जा रही है। इसी दौरान तालिबान हुकूमत के तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक ट्वीट में कहा कि अफगानिस्तान रेलवे अथॉरिटी को कोई तकनीकी मसला नहीं है, और उन्होंने मजीद कहा कि यह कार्रवाई उज़्बेकिस्तान रेलवे अथॉरिटी ने मुख्तसर वक्त के लिए की है। मुजाहिद ने अफगान ताजरों को मशवरा दिया कि वो अपनी दरामदाद बरामदाद के लिए कोई दूसरा रास्ता इस्तेमाल करें, जब तक कि हीरातान रेलवे स्टेशन पर मौजूदा मसला हल नहीं हो जाता। तालिबान हुकूमत की डिजास्टर मैनेजमेंट की वजारत का कहना है कि अफगानिस्तान में गुज़श्ता 1 माह के दौरान शदीद सर्दी से जान की बाजी हारने वालों की तादाद 175 तक पहुंच गई है। वजारत के ये तर्जमान शफीउल्ला रहीमी ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि गुज़श्ता माह सर्द दर्जे हरारत के बाइस पैदा होने वाले हालात में 30 अफराद बुरी तरह मुतासर हुए, जबकि 100 मकानात भी तबाह हो गए। अमरीकी तहकीकती इदारे FBI के एजेंटों ने इतला दी है कि उन्हें बुध को सदर जो बाइडन की रिहाइशगाह से तलाशी के दौरान कोई नई खुफिया दस्तावेजात नहीं मिली हैं। ताहम सदर बाइडन के जाती अटॉर्नी बॉब वाबर का कहना है कि FBI एजेंट्स सदर के घर से मवाद मजीद तजिए के लिए अपने साथ ले गए हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता माह रियासत डेलावेयर के शहर वेलमिंगटन में बाइडन की निजी रिहाइशगाह पर तलाशी के दौरान FBI एजेंटों ने कुछ मवाद और हाथ से लिखे हुए नोट्स अपने कब्जे में लिए थे, जो बज़ाहिर बाइडन के नायब सदर के वक्त से मुतालिक थे। अमरीका और फिलिपाइन ने जुमेरात को एक माहदे का ऐलान किया, जिसके तहत अमरीकी फौज को फिलिपाइन के 4 नए फौजी मकामात तक रसाई दी जाएगी। ये तौसी दिफाई तआवुन के बेहतर मुहायदे का हिस्सा है, जिसमें 5 मौजूदा साइट्स शामिल हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टन ने मुहायदे का ऐलान करते हुए कहा कि हमने बेहतर दिफाई तआवुन के मुहायदे को वसत देने पर तबादला ख्याल किया, जो हमारी अफवाज को फिलिपाइन भर में कलीदी मकामात से ज्यादा मुआसर तरीके से काम करने की इजाज़त देगा। यह नया मुहिदा ऐसे वक्त में सामने आया है जब 2 देरीना इत्तेहादी ताइवान और बहरे जनूबी चीन में उसके इकदामात के खिलाफ चीन की बढ़ती हुई जारियत का मुकाबला करना चाहते हैं। यूरोपीय यूनियन के रहनुमा जुमेरात को यूक्रेन के आवाम के लिए हिमायत का पैगाम लेकर कीव पहुंचे हैं। यूरोपीय यूनियन कमीशन के सदर उर्सुला वॉन डर लेयन ने ट्वीट किया कि हम यहां यह दिखाने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि यूरोपीय यूनियन हमेशा की तरह मजबूती से यूक्रेन के साथ खड़ी है। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने भी यूक्रेन के बाशिंदों के लिए अपनी हिमायत का इरादा किया और कहा कि हम जंग के दौरान और जंग के बाद की तामीर नौ में भी आपके साथ खड़े हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बुध के रोज अपने रात के खिताब में कहा था कि रूस 24 फरवरी को जंग का एक साल मुकम्मल होने के मौके पर मैदान जंग में कुछ कामयाबियां हासिल करने की कोशिश कर रहा है और ऐसे हालात में हम सबको खासतौर पर मुत्तहिद होने की जरूरत है। इसराइली फोर्सेस ने गजा से फायर किए गए एक रॉकेट को रोकने के चंद घंटे बाद गजा की पट्टी पर जुमेरात की सुबह फजाई हमले किए। इसराइल की फौज का कहना है कि फजाई हमलों में रॉकेट तैयार करने की तंसीब को निशाना बनाया गया जो अस्करियत पसंद ग्रुप हमास के जेरे इस्तेमाल है। जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। इसराइल की कौमी सलामती के वजीर एतमार बेन गोयर ने बुध के रोज रॉकेट दागे जाने के बाद ट्वीट किया कि वो फलस्तीनी कैदियों के लिए सूरत हाल को सख्त कर देंगे। रॉकेट हमले और फजाई हमले एक ऐसे वक्त पर हो गए हैं जब तशद्दुद के वाकयात में इजाफा हो रहा है। मशरिकी यरूशलम में एक यहूदी इबादतगाह के करीब हाल ही में एक मुसल्ला फलस्तीनी ने 7 अफराद को हलाक कर दिया था और इसराइली फोर्सेज ने गुज़श्ता हफ्ते मगरबी किनारे के एक पनागुजी कैंप में छापे के दौरान 10 फलस्तीनियों को हलाक कर दिया था। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने इस हफ्ते के शुरू में खित्ते का दौरा करते हुए दोनों फरीकों को पुरअम रहने पर जोर दिया। ईरान के जौहरी तवानाई के इदारे ने बुध के रोज अक़वामे मुत्तहिदा के जौहरी निगरान इदारे की इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया जिसमें कहा गया था कि ईरान ने अपने फरदौ प्लांट में यूरेनियम अफसूदा करने के आलात में गैर एलानिया तब्दीली की है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा कि उसके इंस्पेक्टर्स को सेंट्रीफ्यूजेस के 2 क्लस्टर्स के दरमियान रब्त में तरमीम का पता चला है जो ईरान की जानिब से एजेंसी को दी गई इत्तलात से काफी मुख्तलिफ था। ईरान के सरकारी मीडिया ने एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन ऑफ ईरान के तर्जुमान के हवाले से बताया कि IAEA की रिपोर्ट उनके एक इंस्पेक्टर की गलती पर मबनी है और ये कि मामला हल हो चुका है। पोप फ्रांसिस ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के दारुल हुकूमत के एक स्टेडियम में जुमेरात को जमा होने वाले हजारों नौजवानों के हुजूम से खिताब किया। किनशासा में यह तकरीब पोप के दौरे के तीसरे दिन मुनाकिद हुई जिसमें अमन और मुफाहमत की अपीलें शामिल हैं। पोप फ्रांसिस ने किनशासा में बुध के रोज तकरीबन 10 लाख लोगों के एक इज्तिमा से खिताब किया। पोप आज जनूबी सूडान जा रहे हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों और दुआओं का इजहार करते हैं जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।